The following is a lecture on Buddha Sandesh, Brahma Gita, from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 47, Verse 19, on the topic of, "Unfortunately, we trusted Krishna only to be betrayed by him. We don't want to hear anything about him." This lecture is given by His Holiness Dada Govindadas Goswami on 29th of December, 1998 and
1999. Krishna Bodho Harilyah. इस पर भीर मानो भ्रमर यह कहे, ननु किमेवम ब्रूषे, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? कृष्ण कथा की निंदा, कृष्ण की निंदा, जब से आया हूं तब से आप कृष्ण की केवल निंदा कर रही हैं। पूर्वम त्वेव सातम रहस्य किमेवम न अवोचत, जब पहले जब कृष्ण यहाँ ब्रज में थे और आपके साथ ही थे, एकांत में उनसे ही आपने क्यों नहीं कहा इस बात को? कृष्ण का कठोर स्वभाव है, निष्ठुर स्वभाव है, कृष्ण कथा मारक है, जो भी है, तो आपने उनसे क्यों नहीं कहा? त्वया एव सातम रहसि, एकांत में तो आपके साथ रहते थे, तो आपने क्यों नहीं कहा? तब राधा रानी कहती हैं, क्या कहें भ्रमर, हम कृष्ण की मीठी मीठी बातों में भूल गए। जिसे कपट से बोले कि हमको उस समय विश्वास, ऋतमिव जिह्म व्याहृतं श्रद्धानः कुलीकरुतमिवाज्ञः कृष्णबद्धो हरिण्यः ददृशुरसकृदेतत्तं नखस्पर्श तीव्रा स्मररुज उपमन्त्रीं भण्यतामन्यवात। हे मधुकर, तल्लीला श्रवणात् बहवो व्यसनम् प्राप्ता इति किं वक्तव्यम्, वयमपि तत् कपटोक्त्या महादुःखम् अनुभू। लीला कथा से तो बहुत लोग दुखी हुए ही, कृष्ण की कपटोक्ति से हम लोग भी बहुत दुख भोग। आप परम अभिज्ञा है और आपके साथ वो थे ही, तो क्यों नहीं कहे? तब कहती है, अज्ञा कृष्ण बद्ध्र हरिण्यः, अज्ञा कृष्ण सार मृग की पत्नियां, कुलिक रूपम कुलकस्य मृगयो व्याधस्य रूपम गीतम, जैसे हरिणिया व्याध के रूप को, कुलक है रूप, कुलक मान व्याध, बहेलिया, बहेलिये के गीत को सुन करके मोहित हो जाते हैं, उसी तरह से हम मोहित हो गए। अर्थात ता जथा तद रूपम सत्यम इति श्रद्धाना, और बहेलिया वो गीत गाता है या हरिण की बोली कभी कभी बोलता है, तो हरिण के कान में अमृत जैसा लगता है, तो वो बिल्कुल आस्वादन में स्तब्ध हो जाती है। उसी समय बहेलिया निकट से आकर के बाण मार देता है। तो इस तरह से जैसे हरिणी व्याध के गीत से मोहित हो जाती है भ्रमर, उसी तरह से हम लोग उस कपटी के व्यवहितम जिह्नस्य कुटिलस्य व्याहृतम कथितम रीतम व श्रद्धा ध्यान, हम उसको सत्य जैसा मान गए। क्या उस कपटी ने कहा था? न पारे हम निर्वध संयुजान सुसाध कृत्यम विविधा शापी। रासलीला में उस कपटी ने कहा था कि यदि मुझे ब्रह्मा जी के बराबर आयु मिले और मैं निरंतर तुम लोगों की सेवा करता रहूं, तब भी तुम्हारे किए गए उपकार के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ब्रह्मा जी की आयु चाह रहा था, सेवा करना चाहता था वो दो चार महीने नहीं था, ब्रह्मा जी की आयु कामना की। और भ्रमर उस समय वो ऐसे बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे कि वीतम युव श्रद्धा, हम तो बिल्कुल सत्य मान गए, श्रद्धा अस्पृहंत्य सत्य। सपने में भी हमने नहीं सोचा कि कृष्ण हमको छोड़कर चले जाएंगे, इतनी उनकी कपट भरी बोली। पाफकृत एक नखस पर तीव्र स्मर रुजर, उसने बार बार हमको अपने नखों से स्पर्श किया। तो कोई व्यक्ति किसी के प्रति बहुत आत्मीयता का भाव रखता है तब तो उसको चींटी काटेगा या नख से छुएगा। हमको बार बार ऐसे प्रेम व्यक्त करते हुए नख से स्पर्श किए थे और उस स्पर्श के कारण हमारा स्मर रुज बढ़ गया। तो आज एतत् ददृश, आज यह दशा देखनी पड़ रही, एतत् ऊपर अव्यय है, एतत् ददृश, आज यह दशा देखी कृष्ण की बोली ने और कृष्ण के कर स्पर्श ने हमारी आज ये दशा कर दिया, ये दिन देखना पड़ रहा है। हम इतनी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, एतत् ददृश, ये दुरवस्थान न तो कदापि स्मर सुखम ददृश, हम कृष्ण के द्वारा कभी सुख नहीं पाए, केवल ये हमारी दुर्दशा हुई। तस्मात् दुखदस्य कथां हित्वा हे उपमंत्री, इसलिए हे दूत, हे उपमंत्री, कृष्ण की कथा को छोड़कर अन्य वार्ता भंडता, अन्य बात करो। कृष्ण की बात छोड़कर अन्य बात करो वो हम सुने, लेकिन कृष्ण की कथा नहीं, भण्यता अन्य वार्ता। अन्यस्य कृष्णेतरस्य वार्ता, कृष्ण के इसे भाव ये है कि केवल कृष्ण कथा बोलो, असली भाव। अथवा अन्यस्य का अन्य वार्ता का अर्थ है अन्यस्य सर्व विलक्षणस्य कृष्णस्य वार्ता भण्यता। कृष्ण का एक नाम है अन्य, क्योंकि वे सब पुरुषों से विलक्षण भिन्न है, तो परम ईश्वर है, दिव्य पुरुष है, उनका सब कुछ अन्य है, भिन्न है, दिव्य चिन्मय, तो उनको अन्य कहते हैं। तो भण्यता अन्य वार्ता, तो सर्व विलक्षण से कृष्ण से वार्ता भण्यता बोला जाए, बोलो। चक्रवर्ती का वास्तव है सर्व विलक्षण से कृष्ण से वार्ता भण्यता, वास्तविक अन्य वार्ता भण्यता राधारण का दूसरी बात करो। ततश्च कराभ्याम गाढ़ बक्षो धृत्वा व्यापला क्षण विमुह भूमौ निपपात एतत् शब्द ध्वनितो, ये चक्रवर्ती काज कहते हैं। कुछ देर के बाद ये कह करके और अपने दोनों हाथों से अपने छाती को पकड़ करके हा हा करते हुए राधा रानी गिर पड़ी भूमि पर, और गिर करके तब कहती एतत् दशा, किसी तरह से बोल पाए कि आज ये दशा देखनी पड़ी, अतो मधुकरो की प्रस्थित थी। तो राधा रानी इस तरह से गिर गई, आज ये दशा देखनी पड़ रही है, हा कृष्ण हा प्रेतन कह करके गिरी, तो मधुकर भी वहां से थोड़ा हट गया प्रस्थान की। अथवा राधा रानी के दांत लग गए, मूर्छित हो गए, तो पानी लेने के लिए गया, तो उद्धव जो दौड़े होंगे वहां पानी लेने के लिए, सखियां राधा रानी को होश में करना चाहती हैं, यह भाव है। एतत् किमपि अनिर्वचनीय प्रगाढ़ा भरे देह धारण लक्षणम असमर्थ दुखम ददृश्म, ये दशा हम देख रहे हैं, ये दशा का एतत् दशा एतत् ददृश्म, इसका क्या मतलब है, जिसको कहना कठिन है, असमर्थ दुखमय स्थिति को आज हम देख रहे हैं, इसलिए हमसे उनकी बात मत करो। क्या करें, हम भी उस हरिणी जैसी अज्ञ थे। और कृष्ण बद्धव शब्द से बहुत ही गूढ़ अभिप्राय है, कृष्ण बद्धव का अर्थ हम क्या कहें हरे, हम ये मान चुकी थी कि हम कृष्ण की बद्धव, कोई अपनी बद्धव को छोड़कर इस तरह से थोड़े भागता है, लेकिन हम उनको मानते थे कि हमारे पति हैं, लेकिन वो कभी नहीं माने कि ये हमारी पत्नी है, इसलिए छोड़ करके चले गए, आज ये दशा देखनी पड़ रही है। यह दशा मुख्य रूप से विचारणीय है। आज एक दशा है कृष्ण विरह में, कृष्ण प्रेम में राधा रानी की जो दशा है और सखियों की, उसको हम लोग पद के माध्यम से स्मरण करेंगे। घनानंद जी कहते हैं कीत को धरि गोवह धार रहो, जिहि मोतन आखिन धोरत है, अरसानी गही उहि बानी कछु, सरसानी सोयानी निहोरत है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, तब यो सब भांति न भोरत है। मन माही जो तोर नहीं तो कहो, विश्वासी स्नेह क्यों जोरत है। किसी सखी ने राधा रानी से कह दिया कि जब कृष्ण इतने कपटी हैं और लगता है कि उनके विरह में सखी तुम मर जाओगी, तो अच्छा है कृष्ण को छोड़ देना। राधा रानी से कहा, चाहे ललिता जी ने कहा या विशाखा ने, किसी ने कहा कि आप छोड़ दो कृष्ण को, सुखी सुख हो जाए, नहीं तो ऐसे तो तुमको मरना पड़ेगा। दिन पर भी कई दिन से खाई नहीं हो, हाहाकार कर रही हो, बिल्कुल रूई जैसी हल्की हो गई हो, दुबली पतली हो गई हो, तो कितना दिन ऐसे चलेगा, मरना पड़ेगा, इसलिए कृष्ण को छोड़ दो। तो राधा रानी कहती चलो चलो दूर हटो पहले हमसे, यहां से मैं कृष्ण को छोड़ दूं, अरे कीट पतंग प्रेम नहीं छोड़ते हैं, मैं छोड़ दूं। उद्धव जी से कहते हैं
प्रीति न मरन विचारे, उधो प्रीति न मरन विचारे।
प्रेम में मरण का विचार आता ही नहीं है। जो प्रेम करता है वो मरने से नहीं डरता है। अरे प्रीति पतंग जरे पावक परी, प्रीति पतंग जरे पावक परी, जरत अंग नहीं तार, जरत अंग नहीं तार, उधो प्रीति न मरण विचार, उधो। देखो उधर विचार करो, एक पतंग है फतिंगा, फतिंगा देखता है कि और फतिंगे जल जल कर मर रहे हैं आग में, छटपटा रहे हैं, परंतु मरने से नहीं डरता है। प्रीति पतंग जरे पावक पर, पावक में आग में कूद करके जल जाता है, उसको आग से प्रेम है, कहां कहां से उड़ करके किसी तरह कठिनाई से, जो कि मनुष्य नहीं चाहते हैं कि वो आवे आग के पास, हटाते हैं लेकिन फिर भी आ जाता है और देखता है और पतंगे जल रहे हैं मर रहे हैं, फिर भी वो भी कूद करके, जरत अंग नहीं तारे, और अंग जलने लगता है, पंख जलता है, फिर भी भागता नहीं है वहां से, जल जाता है। देखते हैं ना फतिंगे जल जाते हैं, भागते नहीं, और भागने की अब शक्ति ही नहीं रहती है, लेकिन वास्तव में और लोगों को तो देखते हैं कि जल रहे हैं, तो जरत अंग नहीं तार, जलते हुए शरीर को हटाता नहीं, जल जाता है। तो उद्धव प्रीति न मरण विचार, प्रेम मरण का विचार नहीं करता है। जब एक फतिंगा इतना आदमी से प्रेम करता है तो मैं कैसे कृष्ण को छोड़ दूं, मरूंगी चाहे कुछ भी करूंगी।
प्रीति तरेवा उड़त गगन चढ़ी, प्रीति तरेवा उड़त गगन चढ़ी, प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ी, प्रीति परेवा गिरत नयात संहारे, गिरत नयात संहारे।
सुना है सारस पक्षी, सारस ना, सारस पक्षी में से कोई एक व्यक्ति मर जाता है, चाहे स्त्री मरे या पुरुष, तो जो बचता है अब ऊपर उड़ करके और आंख बंद करके और उड़ना छोड़ करके धरती पर गिरता है जोर से कि मैं मर जाऊं। हमने देखा था, आपको दिखाया था, हम सदैव दस्तान को दिखाया था। मैं कहा ये कैसे गिर रहा है? ये कहे कि ये अपने प्रिया के विरह में, चाहे प्रिया होगी प्रियतम के विरह में, अब मरना चाहते। तो सारस पक्षी का कोई एक जोड़ा बिछोड़ जाता है तो वो बिल्कुल ऊपर उड़ करके अपने को गिराता है मारने के लिए, उड़ना छोड़ करके घास गिरता है नीचे और कुछ समय के बाद मर जाता है। कई बार गिरने प्रेम करना वो जानता है, मरने से कहां डर है। मरण तो स्वीकार करता है परंतु प्रेम नहीं छोड़ता है। परेवा मैंने पक्षी,
प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ी, प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ी, गिरत न आप संहारे, गिरत न आप संहारे, प्रीति मधुत के तकी कुसुम दशिखंत आप प्रहारे।
और मधु भौरा, भौरा केतकी पुष्प पर ही बैठता है। केतकी से उसको इतना प्रेम है भौरे को कि उसके कांटों से उसके पंख फट जाते हैं, भौरे के बिंध जाता है, फिर भी केतकी पर बैठना नहीं छोड़ता। मरने से क्या डरना? कोई प्रेम करने वाला मरण पर विचार करता है या विरह के दुख पर? अरे देखो पानी का प्रेम दूध से, दूध से प्रेम करता है, दूध को बढ़ा देता है। तो एक किलो पानी में पावर दूध डाल दीजिए तो वो दूध सवा किलो माना जाए, उसका साथ दिया। लेकिन वही दूध यदि आग पर बैठाया जाए तो दूध पानी उसको छोड़कर भागता नहीं है, पहले पानी जलता है अपने प्रियतम के लिए, दूध बचा रहता है, पानी जलता है दूध को बचाने के लिए। ये तो प्रेम है, देखिए कितनी सुंदर बात कह रही है।
प्रीति जान जैसे तय पानी, जान अपन पौ जा रहे,
अपने को जला देता है पानी लेकिन दूध का सौंग छोड़कर नहीं भागता, साथ दिया तो दिया। ये दोनों में प्रेम है, अगर दूध के साथ पानी हो जाता है तो दूध की का दाम बढ़ जाता है, या वजन चाहे जो भी कहिए, जो भी तौलता है तो दूध ही कहकर तौलता है ना, उसे दाम भी ज्यादा ले लेता है। और दूध कितना प्रेम करता है उससे एक माने में कि पानी को भी अपने भाव का कर देता है। पानी से उसका प्रेम है, पानी के साथ संग हुआ तो दूध जैसा उसका दाम कर देता है, नहीं तो पानी कौन खरीदेगा? ये पानी अलग रहे तो उसकी क्या कीमत है? तो पानी का प्रेम दूध से देखो तो प्रीति जान, प्रीति सब जगह ये प्रेम यह है, देखो जैसे पानी का प्रेम दूध से, जान अपन तो जा रहे, अपने को जलाता है। दूध तो बचा रहता है, भले खोवा कहे चाहे कुछ कहे, उसको पानी वास्तव में जलता है, दूध बचा रहता है। नहीं दूध भी जल जाए तो फिर कौन खोवा मारेगा और बेचेगा खाएगा? ये सब मिठाइयां बनना बंद हो जाएगी। जल का जैसे प्रेम है तो जल जलने से नहीं डरता है। कितना आंच दिया जाता है हीट, बल्कि लोग देखते हैं इतना उफान आ जाए दूध में, इतना उफान आ जाए तब स्वाद बढ़ेगा। जो अपने प्रियतम को स्वादिष्ट बनाने के लिए जल जल जाता है, जल जाता है। तो जब जल ऐसा प्रेम कर सकता है दूध से, तो मैं तो एक सजीव व्यक्ति हूं, मैं कैसे कृष्ण को छोड़ दूं?
प्रीति कुरंग नाद रस लोभक तानी तानी शर्मारे।
और कुरंग हरिण का प्रेम देखो नाद रस से, ध्वनि रस शब्द से कितना प्रेम है हरिण का कि वो उसके उस पर लुब्ध रहता है, लुब्धक उसको बाण मारता है, बहेलिया बाण मार देता है गीत सुनने के कारण, फिर भी हरिण गीत सुनना नहीं छोड़ता है।
प्रीति जान जननी सुत कारण को नयतन पोहार।
प्रीति देखो माँ का अपने बेटा के प्रति है, पुत्र कितनी शैतानी करता है, माँ की सेवा नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके प्रेम में कमी नहीं आती। वो अपने पुत्र का पालन करती है, खिलाती है, पिलाती है, पढ़ाती है, एंड सब तरह से उसकी सेवा करती है। और अब तो ऐसे भी पुत्र पुत्र वधु हो गए हैं, घर पर पुत्र वधु आती है तो ततोह की भी सेवा बेचारी सास ही करती रहती है। देखा गया जबकि धर्म यह है कि अब पुत्र सेवा करे माँ की और ततोह सेवा करे, लेकिन नहीं, वो पढ़ी लिखी है, वो काम नहीं कर पाएंगे। पढ़ी लिखी है केवल टीवी भर देख सकती है और कुछ नहीं कर सकती। माँ का प्रेम वास्तव में पुत्र के प्रति है। तो ये सब प्रीति के उदाहरण। प्रीति जान वहां समझो प्रीति को, जननी सुत कारण को न अपन को हार। माँ अपना सब कुछ से हार देती है बच्चे के लिए, सब कुछ ऋण लेकर के माता पिता बच्चे की सेवा करते हैं। बच्चा बीमार पड़ जाए, घर में पैसा ना हो तो ऋण लेकर कर्जा लेकर के भी दवाई कराते हैं और मजदूरी कर करके उसको पूरा करते हैं, अपने बच्चे के लिए जो खर्च किए। प्रेम इसको कहा जाता है।
सूर श्याम से प्रीति गोपिन को कैसे निर्वार।
इसी तरह से है उद्धव, हम लोगों का प्रेम है कृष्ण के प्रति, सच्चा प्रेम है, वो कैसे छूट सकता है। जब एक कीड़े और जड़ जल भी प्रेम नहीं छोड़ते हैं, जल जाते हैं, मर जाते हैं, हम कैसे छोड़ देंगे। इसको प्रेम कहा। कोई गोपी कहती है, या राधा को ही समझिए, कोई कहती है जो एक विषय में तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है। विचार करने लगे, जैसे कहती है एतक दशा ददृश में, हम आज इस दशा को देख रहे हैं, देखी है, रो रही हैं, बिलख रहे हैं, कृष्ण नहीं आते हैं, लेकिन उद्धव जी आप बहुत भाग्यशाली हैं। एक प्रकार का व्यंग भी है और दूसरे में हृदय की बात प्रकट कर रही है। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहीन मन अनुरागी। आपका मन प्रेम तगा का ताग का रसी का स्पर्श नहीं किया और मन आपका अनुराग के झंझट में नहीं पड़ा, इसलिए आप बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली है। कृष्ण के प्रेम में पड़ गए होते तो हम ही लोग जैसे अपना नक्श धरती कुरेदते, विलाप करते, दुख से वंचित हो जाते, सुख से वंचित हो जाते, बहुत दुखी होते। तो कोई पूर्व जन्म में आपने बहुत भाग्य तप किया था, इसीलिए कृष्ण प्रेम का रंग आपको छू नहीं पाया। बहुत भाग्यशाली, बहुत गहरा व्यंग है उद्धव जी का।
उधो तुम हो अति बड़ भागी, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात, अपरस रहत स्नेह तगात, नाहीन मन अनुरागी, नाहीन मन।
स्नेह तगा मैंने स्नेह बंधन, आप इससे दूर रहे स्नेह के सिंकर से, बंधे नहीं, बहुत भाग्यशाली। बंधन स्नेह तागा, ताग तागा समझते हैं ना, स्नेह के बंधन से दूर रहे बहुत अच्छा किए, नहीं बंधे और का मन रंगाया नहीं। राग मैंने रंग अनुराग, आपका मन में अनुराग नहीं हुआ, बहुत अच्छा किया। आज इतना सुख से आप हैं, बल्कि हम लोगों का दुख दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सुखी हैं तभी तो। साधारण भाग्यशाली आप नहीं हैं, अति भाग्यशाली हैं।
पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी।
तारस देहन
दागी का मतलब दिग्ध, दिग्ध भींगा नहीं। आप पुरैन के पत्ते जैसे जल के भीतर रहते हुए भी जल से आपका देह छुआया नहीं। पुरैन का पत्ता, कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन जल का स्पर्श नहीं करता है। जल में रहते हुए भी ये सब अनुभूत विषय है सबका। तो आप पुरैन के पत्ता है, बहुत अच्छा। रहत जल भीतर आप रात दिन कृष्ण के साथ रह रहे हैं। इनका पत्र लेकर क्या है, उनकी पोशाक पहन करके आए, सब किए हैं लेकिन कृष्ण के फेरे में आप पड़े नहीं। बहुत अच्छा, कोई भाग्य था। इतना बड़ा व्यंग है, रात दिन कृष्ण के साथ रहता है लेकिन इसको कोई कृष्ण से मतलब नहीं है। यहाँ आकर प्रचार निर्गुण ब्रह्म का कर रहा है, नमक हराम आया है कृष्ण का दूत बन करके और निर्गुण ब्रह्म का प्रचार कर रहा है।
पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी। जो जल माह तेल को गागरी बुंदन ताके लागी।
उस किसी घड़े में खूब तेल रखा गया हो कई वर्ष से, तेल सूख जाता है सब तरफ, तो उस घड़े को आप नदी में डालिए तो एक बूंद भी सटेगा नहीं पानी। धन्य है, मथुरा में रहते हैं कृष्ण के साथ रहते हैं लेकिन तेल के घड़ा हो गए।
जो जल माही तेल की गागरी बुंदन ताके लागी।
एक बूंद भी नहीं सट पाती, नहीं लग पाती।
प्रीति नदी में पावन बोरो दृष्टि न रूप परागी।
अभी तो प्रेम की नदी में तुमने पैर नहीं रखा, नहीं तो फिसल जाते, गिर जाते, काई रहती है उसमें। अच्छा किया बच गए।
प्रीति नदी में पावन बोरो, अभी तो पैर नहीं बोरा जंग, नहाओगे कहां से, पैर तक नहीं उतारे हो प्रेम की नदी में।
और दृष्टि ने रूप पराग, और दृष्टि तुम्हारे रूप पराग से युक्त नहीं हुई है।
सूरदास अबला हम भोल, हम क्या कहें, हम तो इतनी मूर्ख हैं भोली भाली कि जैसे गुड़ खाने के लिए चींटियां जाती हैं और गीले गुड़ पर फंस करके छटपटा कर मरती हैं, वो तो हमारी दशा हो गई।
हमने भी सोचा कि हम कृष्ण से प्रेम करें लेकिन ऐसा किया कि उसी में चींटी जैसी फंस करके मर गई। देखते हैं कई बार हम लोग देखे हैं गुड़ खाने चींटी गई है और उसी पर अब चलती है, चला नहीं जाता है, पैर फंसा सब फंसा कुछ करके बाद मर जाती।
तो सूरदास अबला हम भोरी, हम तो अबला, हम तो स्त्री है, ऐसे स्वाभाविक कम बुद्धि होती है। गुड़ चींटी जो पागी,
जैसे चींटियां गुड़ में पाग जाती है, बहुत भीग जाती है, चला नहीं जाता, एक सेंटीमीटर भी नहीं चल सकती है, जहां बस उसी खास करके चोवा कहते हैं गुड़, तो इस तरह से हम फंस गए।
सूरदास अबला हम भोरी गुरु चींटी जो पाग,
हम तो ऐसे पाग गए। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप पर कृष्ण प्रेम का रस तनिक भी टच नहीं किया। धन्य आप, धन्य हम ऐसे जानती तो आपको ही गुरु बना करके रहते। हरे कृष्ण, फिर 11 बजे बैठे हैं।
तो हम माने बात तुम्हारी, तो हम माने बात तुम्हारी।
क्यों कम मानेंगे कि अपने ब्रह्म को मोर मुकुट पहनाकर और पीताम्बर धारण करा करके लाओ तब मान जाएंगे, कृष्ण को छोड़कर उसी का भजन करेंगे।
अपनो ब्रह्म दिखावहु धो, अपनो ब्रह्म दिखावहु धो, अपनो ब्रह्म दिखावहु धो, अपनो ब्रह्म मुकुट पीताम्बर धारी, मुकुट पीतांबर धर तो हम माने बात तुम्हारी तो हम माने बात तुम्हारी। अपने ब्रह्म को मुकुट सजा करके लाओ, पीतांबर पहना करके और उपलक्षण से बांसुरी धारण करा करके, नूपुर पहना करके, और वो ठीक कृष्ण जैसा तिरछी चितवन से देखे, और दूसरे रंग का होगा तो सांवला पेंट कर दो, तो हम लोग कृष्ण को छोड़कर उससे प्रेम करेंगे। अब बताइए, निराकार ब्रह्म को मुकुट और पीतांबर कहां से धारण कराए जाए? हम लोग मानने के लिए बात तैयार है, लेकिन ये कैसा होता है? क्या निष्ठा है! ये तो गोपियों की निष्ठा है, लेकिन सूरदास जी की निष्ठा देखी। तो हम माने बात तुम्हारी तो हम माने बात अपना ब्रह्म दिखावहू धो अपना ब्रह्म मुकुट पीतांबर धारी तो हम माने बात तुम्हारी तो हम माने बात तुम्हारी। भजी है तब ताको सब गोपी
भजी है तब ताको सब गोपी
सही रही है बरुगारी गोपियां कहते हैं कि हम लोग तब उसका भजन करेंगे। अगर वो पीतांबर मोर मुकुट बांसुरी आदि धारण करके तुम्हारा ब्रह्म आवे तो हम उसका भजन करेंगे। भले लोग हमको गाली देंगे कि कृष्ण को छोड़ दिया इन लोगों ने, दूसरे ब्रह्म का भजन करने लगी जो कृष्ण जैसा पोशाक पहनता है। दुनिया में लोग हम लोगों को भ्रष्ट कहेंगे, पतिव्रत शून्य कहेंगे, हम इसको सह लेंगे, गाली सह लेंगे। आप इतना आग्रह कर रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म का भजन करो निराकार, तो उद्धव जी जरूर भजेंगे, लेकिन उसको पीतांबर पहनाकर मुरली उसके हाथ में देकर और मुकुट बांध कर उसके सिर पर लाइए, हम स्वीकार कर लेंगे। भले दुनिया हमारी बेइज्जती करे, क्या करेंगे, प्रियतम के सखा है, इतनी मेहनत से आए हैं, हम स्वीकार करेंगे। अब क्या होगा, उद्धव जी का दिमाग कहाँ गया होगा उस समय। तो हम माने बात तुम्हारी तो हम माने बात तुम्हारी। देखो तब हम आपके ब्रह्म का भजन करेंगे, भले दुनिया में लोग हमें गारी दें, लेकिन आप तो भूत समान बतावत हमको, उसको तो आप कह रहे हैं कि आकार ही नहीं है, तो आकार तो भूतों का नहीं होता है। भूत जैसा बता रहे करे कि भजन करो भजन करो, तो हम भूत का थोड़े भजन करेंगे। भूत समान बताओ तो हमको जा रहे हूं श्याम विसार, हमको तो जला रहे हो, ये कह रहे हो कि श्याम को विसार दो और ब्रह्म का भजन करो, हमको तो जला रहे हो ऐसी बात कहकर। हमारे लिए तो सबसे बड़ा धन हमारे प्रियतम की स्मृति है। दर्शन नहीं हो रहा है तो मन की आंखों से हम लोग उनको देख रहे हैं, और सब कुछ छूट गया है लेकिन स्मरण धन है, और उसको भी भुलवा करके अपना एक भूत जैसा ब्रह्म दे करके और हमको जलाना चाहते। भूत प्राय जला देते, अज्ञा बेताल जा रहे हैं, बाप रे बाप, भूत लग जाएगा ब्रह्म तो हम लोग तो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। भूत समान बता आंख गई है उसको पर ऐसे भूत होते हैं, उनको शरीर नहीं मिलता है जल्दी, जो अधोगति में जीव पड़ जाते हैं तो भूत रहते हैं, उनको कोई खास आकार नहीं मिलता है, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। ब्रह्म यदि ऐसा हो जाए भूत है, जो आंख नहीं है, मुंह नहीं है, बोलने का चलने के लिए पैर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भजन क्या करके उसके साथ रहेगा क्या? खूब अंग वाला हो सजा करके लाइए, सांवला सलोना हो, पीतांबर मुकुट बांसुरी, तब कोई बात नहीं।
दुनिया में बेइज्जती सह करके भी हम लोग इसको स्वीकार कर लें। एक प्रकार से करें हमको ब्राह्मण से मतलब नहीं है, हमको मुकुट और बांसुरी पीताम्बर से मतलब, जो भी ब्रह्म पहन लेगा उसे प्रेम करेंगे। तो आप यदि निराकार निर्गुण ब्रह्म का भजन कराना चाहते हैं तो उसका मेकअप करके लाएंगे, खूब अच्छा मेकअप करके आएगा, हम स्वीकार कर लेंगे। अपन भजी है तब ताको सब गोपी, सही रही है बरुगारी, भूत समान बतावत हमको जारों श्याम बिसारी। एक तो हम श्याम को छोड़ देंगी और इधर भूत जला देगा, तब क्या करेंगे। जलाना इसलिए कहती है कि वो उधर जी बता दिए कि उनका कोई निराकार नहीं है, ब्रह्म आकार नहीं है, गुण नहीं है और ज्योति स्वरूप है। ज्योति तो ऐसे ही विरह ज्वर लगा हुआ है देह में, ऊपर से और हीट आएगा तब तो भस्म हो जाएगी, ज्योति नहीं देखना है। ज्योति तो आप जलाने आए हैं क्या, विरह का ताप इतना अधिक है कि ऊपर से ज्योति नहीं चाहिए, और उस पर भी भूत बता रहे हैं तो भूत और दग्ध कर देते हैं, जला देते हैं। तो अगिया बेताल ब्रह्म बता रहे हैं जला देते जक्ष भूत। वास्तव में निराकार ब्रह्म भूत नहीं तो और क्या है, क्या उसमें है वास्तव, न बोलेगा न बात करेगा न हंसेगा न खेलेगा न खाएगा, मरने के बाद भी उससे भेंट नहीं होगी तो निराकार ही रहेगा, तो जो भजन कर रहा है वो कहाँ जाएगा। तो लोग कहते वो जाकर उसी में समा जाएगा, तो अरे बाप इतना खतरा कौन मोल ले, अगर वो हम में समा जाता तो चलो कुछ ठीक है, हम क्यों खत्म हो जाए। एक बार एक व्यक्ति बहुत बहस कर रहा था हमसे कि एक दिन जीव ब्रह्म में समा जाता है, तो जीव और ब्रह्म एक ही है। तो मैं कहा कि जीव ब्रह्म में समा जाता है ना, कि ब्रह्म जीव में समाया है कभी, तब तो सजग हो गया, हाँ ये बात तो है। तो ब्रह्म है ना अलग जीव से, ब्रह्म है तब तो जीव उसमें समाएंगे ना, पहले से ब्रह्म है, और ऐसा नहीं है कि ब्रह्म है आकर के जीव में समा गया, नहीं। वो समुद्र और बिंदु का उदाहरण दे रहा था, तो मैंने कहा कि बिंदु जाकर समुद्र में समाएगा ना, कि समुद्र आकर के बिंदु में समुद्र हो जाएगा। तो ब्रह्म है, भगवान है, अलग है, जीव उनमें मिले चाहे उनके सेवा करे जो कुछ करे, लेकिन भगवान है। तो आज तक न जाने कितने जीव भगवान में जा करके मिलेंगे, अपनी सत्ता खत्म कर करके, और भगवान जो कहते हैं, और हमारे मिलने से भगवान में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, जितना है उतना ही रहेंगे। ये कोई विवेकी आदमी पूछे कि हम कहाँ रहेंगे, कहीं नहीं, खत्म हो। तो अपने को खत्म करने के लिए भजन किया जाए। रत्नाकर जी ने खूब अच्छा तर्क दिया गोपियों के पक्ष, जे मुख सदा सुधायचवत हैं, जे मुख सदा सुधायचवत हैं, ते दिस क्यों अधिकारी, सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझ रही ब्रजनारी, सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझ रही ब्रजनारी। अरे जो मुख है अमृत पिया है रोज कई बार, उस वो क्या विष पिएगा कभी, क्या उस मुख में विष देना चाहिए, नहीं। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां ब्रजनारियां तो बस केवल कृष्ण के अंग पर रीझी थी, एक मतलब अनन्य भाव से, केवल अंग रूप चाहिए, निराकार निराकार ये सब नहीं चाहिए। सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझ रही ब्रजनारी, सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझ रही ब्रजनारी।
जे मुख सदा सुधाय चवत है ते दिस क्यों अधिकारी सुधाय चवत है ते दिस क्यों अधिकारी। अचवत का अर्थ बहुत होता है, बहुत घट घट जो पिया है मुख अमृत सुधा। जे मुख सदा सुधाय चवत है ते दिस क्यों अधिकारी। जे मुख सदा सुधाय चवत है सूरदास प्रभु एक अंग पर सूरदास प्रभु एक अंग रीज रही ब्रजनारी रीज रही ब्रजनारी।
ब्रज की नारियां केवल कृष्ण के अंग पर रिझित, उनको रूप चाहिए। तो यह जो रूप की उपासना है भगवान की, यह सुधा अमृत और निर्गुण ब्रह्म आदि की बात बीस है जहर। इन्हें तो बहुत अंतर कौन विष पीने जाए। और वास्तव में विष सभी भयानक है कि विष पी करके आदमी मर जाए तो फिर जन्म मिलेगा, लेकिन निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेगा तो ऐसा मरेगा कि फिर लौट नहीं सकता, खत्म हुआ नहीं पूरा, जो स्वरूप ही गायब हो जाएगा। ऐसे तो जीव रहेगा या शरीर बदल कर दूसरा मिलेगा, विष पीने पर शरीर को नुकसान करता है, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान ये तो आत्मा को ही खत्म कर देता है। उनके अनुसार जो लोग इस बात को मानते हैं, वास्तव में जीव कभी खत्म नहीं होता है, शाश्वत है, लेकिन वे मानते हैं कि हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी, हम ब्रह्म में मिल जाएंगे, तो ऐसा भयानक जहर। तो अब तक संसार में जो जहर है तो केवल शरीर मारता है, लेकिन आत्मा को भी मार दे जो न जाए ते मृत्ये व कदाचित, इसको भी बिल्कुल जीरो कर दे खत्म, ये तो महाविष हुआ। तो जो मुख सदा अमृत पिए हैं वे जहर क्यों पिए। हे उद्धव, हम तब आपकी बात मानेंगे जब आप अपने ब्रह्म का मेकअप करके खूब लाइए, और यदि वह गाय चराने जाएगा तब तो और योग्य मान लेंगे हम लोग, हाथ में लकटी लेकर के, या कभी नाचेगा हमारे साथ, माखन देने पर खाएगा, तब तो हम एकदम स्वीकार कर लेंगे, कृष्ण को भूल जाएंगे, भले लोग गाली देंगे। इस प्रकार की शर्त है गोपियों। आप ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि उस ब्रह्म का भजन करो जिसके हाथ नाक पैर कुछ नहीं है, तो ऐसा ब्रह्म हमारे किस उपयोग में आएगा, कौन काम करेगा हमारा। हम तो चाहते हैं कृष्ण के विरह में है, तो चाहते हैं कृष्ण जो जो काम करते थे वह काम वो करे, कृष्ण हमारा दिया हुआ माखन खा जाते थे। तो आपका ब्रह्म यदि हमारा दिया हुआ माखन खाए तो हम तैयार हैं उससे प्रेम करने के लिए, या हमारे साथ नाचे, जो कोई विपत्ति आवे जिसे गोवर्धन उठा लिए थे कृष्ण, वैसे भी आपका निराकार ब्रह्म कहीं गोवर्धन टांग ले या बवानल पी जाए, तब तो हमारे लिए उपयोग है, नहीं तो ले जाइए मथुरा कुबरी को दे दीजिए निर्गुण ब्रह्म को। यह मतलब कर बीनु कैसे गाय दुही है हमारी वाह, कर बीनु कैसे गाय दुही है हमारी वाह, कर बीनु कैसे गाय दुही है हमारी वाह, कर बीनु कैसे गाय दुही है पद बीनु कैसे नाची थीर की रिझाई है, कर बीनु कैसे नाची थीर की रिझाई है, कह रात न कर बदन बीनु कैसे चाखी, कह रात न कर
माखन बजाई बेनु गोधन गवाई है।
माखन बजाई बेनु
देखी सुनी कैसे दृग श्रवण भी नहीं हाय।
देखी सुनी कैसे दृग श्रवण भी नहीं हाय।
भोरे ब्रज वासी न की विपति बराई है।
भोरे ब्रज वासी न की विपति बराई है।
राव रो अनूप को अलख रूप ब्रह्म।
राव रो अनूप को अलख रूप ब्रह्म।
उध कहो कौन धौ हमारे काम आई है।
उध कहो कौन धौ हमारे काम आई।
आप कह रहे हैं कि आपके ब्रह्म के कोई आकार नहीं है, हाथ पैर नहीं है, तो बिना हाथ के हमारी गाय कैसे दुहेगा आपका ब्रह्म। ब्रज में तो ऐसे ब्रह्म की जरूरत है जो गाय दुहा करे, तो कर बिनु कैसे गाय दुही है हमारी, वो गाय कैसे दुहेगा। और पद बिनु कैसे नाचे थिरकी रिझाई है, चरण नहीं है तो नाच नाच कर हमको कैसे रिझाएगा, बिना पैर के कैसे नाचेगा। कहे रत्नाकर बदन बिनु कैसे चाखी माखन। रत्नाकर कभी कहते हैं गोपियों की तरफ से, गोपियां कहती हैं कि जब आपके ब्रह्म को बदन नहीं है, मुंह नहीं है, तो माखन कैसे खाएगा और बेनु कैसे बजाएगा और गौओं को कैसे गवाए, मतलब गोधन गवाई है, गायों को बुलाना ले जाना ही आ कहना कौन करेगा। चला भी जाए गाय चराने तो उसको मुंह ही नहीं तो बोलेगा क्या। तीन काम मुंह से करना है, माखन खाना, बेनू बजाना और गौओं को पुकारना। देखी सुनी कैसे दृग श्रवण बिना ही है। जब दृग और श्रवण नहीं है, उसको आंख नहीं है कान नहीं है, तो उनके बिना हमारी विपत्ति को कैसे देखेगा और सुनेगा, और नहीं देखेगा सुनेगा तो भोरे ब्रजवासी ने की विपत्ति बढ़े, कैसे विपत्ति दूर करेगा। देख ही नहीं सकता कि लोग दवानल से जल रहे हैं, सुन ही नहीं सकता कि कोई विपत्ति आई है, तो हमारे भोरे ब्रजवासियों की विपत्ति को बढ़ाएगा कैसे, कैसे दूर करेगा। तो रावरो अनूप को अलख अरूप ब्रह्म, आपका कोई अनुपम या अलख बिना रूप वाला ब्रह्म, उधो कहो कौन धो हमारे काम आए, हमारे काम में क्या आए, किस काम में आए, यह इसकी कोई जरूरत नहीं।
कर बीनो कैसे गाय दुही है हमारी वाह।
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 पद बीनो कैसे नाची थिर की रिझाई है।
पद बीनो कैसे नाची थिर की रिझाई है।
कह रत न कर बदन बीनु कैसे चाखी।
कह रत न कर बदन बीनु कैसे चाखी।
माखना बजाई बेनु गोधन गवाई है।
गवाई का अर्थ गरुआरी करना, जो भोजपुरी में कहते हैं, बुलाना, गायों को छानना, बहना।
देखी सुनी कैसे दृग श्रवण भी नहीं हाय।
देखी सुनी कैसे दृग श्रवण भी नहीं हाय।
भोरे ब्रज वासिना की दीपति बराई है।
भोरे ब्रज वासिना की दीपति बराई है।
राव रो अनूप को अलख रूप ब्रह्म राव रो अनूप को उधो कहो कौन दोहा मारे काम आई है।
उधो कहो कौन दोहा मारे काम आई है।
उधो कहो कौन दोहा मारे काम आई है।
उधो कहो कौन दोहा मारे काम
हृदय एक दर्पण है, जैसा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण है, शीशा जैसा है। अगर इस शीशा पर कोई पत्थर मार दे तो शीशा कई टुकड़े में हो जाता है, जितना टुकड़ा होगा उतना मुख उसमें दिखाई पड़ेगा, अब देखेंगे तो बंट जाता है। तो तुम बैन का पत्थर चला रहे हो उद्धव हमारे हृदय पर, हमारा हृदय टुकड़ा हो जाएगा और जितना टुकड़ा होगा उतने श्याम सुंदर उसमें बस जाएंगे। तो एक श्याम सुंदर बस करके तो उजार दिए, हमारे हृदय में हजारों मनमोहन मत बसाओ, इस प्रकार के वचन मत चलाओ। आए हो सिखावन को जोग मत रहते हो तो पर, अगर जोग सिखाने आए हो तो बिजोग की बात मत करो, तुम्हारी सारी बातें बिजोग की हो रही है ना। जब योग सिखाए हो तो श्याम सुंदर को ला करके हमसे मिलाओ, और तुम तो वियोग की बात कर रहे हो, उधर कृष्ण को मथुरा में रहने दो इधर ध्यान करो, तो हमेशा तो वियोग की बात कर रहे हो। रत्नाकर जी कहते हैं कि दया कर ही दरस दिन हो, आप जब दया करके दर्शन दिए, आप स्वयं ही आए हमारा दुख हरने के लिए, तो दुख दरी देखो तो पर अधिक बढ़ाओ ना, दुख नष्ट करने के लिए आए हैं तो दुख बढ़ाइए मत हम लोगों का। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारे हाय, हमारा मन रूपी शीशा दर्पण टुक टुक हो जाएगा आपकी बात से, हो गया है। चुकी हूँ कठोर बैन पाहा न चलाओ ना, चुक करके भी मतलब भूल करके भी कठोर वचन का पत्थर हमारे हृदय पर मत चलाइए, नहीं तो एक मनमोहन तो बसी के उजारो मोही, ये में अनेक मनमोहन बसाओ ना। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो पर, उधो ये वियोग के वचन बतराओ नाम। आए सुना कर दया करी दरस दीनो, दुख दारी देखो तो पर अधिक बढ़ाओ नाम। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारे हाय, चुकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन तो बस के उजार मोही, हिये में अनेक मन मोहन बसाओ ना। हिये में अनेक मन मोहन बसाओ ना। सुंदर उक्ति है, पत्थर दर्पण पर झेला मार दिया जाए और फूट जाए कई टुकड़ा में, और आप अपना रूप देखिए तो जितना टुकड़ा है उतना दिखाई देता है। तो उद्धव जी आपकी बात जो है वो पत्थर जैसी कठोर है, और हमारा कोमल शीशा की तरह हृदय है, आप कठोर बैन रूपी पत्थर मत मारी, नहीं तो इसके हजारों टुकड़े हो जाएंगे और हजारों मनमोहन उसमें दिखाई देने लगेंगे। इसका अर्थ एक और भी है कि उद्धव जी आप चाहे कितना भी विरुद्ध उक्ति बोलिए कृष्ण प्रेम के अलावा, लेकिन आप जितना बोलेंगे और बैन बाण चलाएंगे तो हजारों गुना प्रेम हमारा कृष्ण के प्रति बढ़ता जा रहा है, और वो घटने वाला नहीं है। लेकिन हम डरते हैं कि एक कृष्ण तो हमारे मन में बस करके हमें उजार दिए ब्रज में, तो हजारों बसेंगे तो क्या होगा। इसलिए अगर दुख देने के सुख देने के लिए आए हैं तो एक मनमोहन जो हमारे हृदय में है उन्हीं को निकालिए, अब और बसाइए मत, मतलब इस प्रकार का कठोर वचन मत बोलिए। टूक टूक हुई है मान
मुकुरा हमारो हाय चुकी हूँ कठोर बहन पहन चलाओ नाम एक मान मोहन तो बसी के उजारो मोही धीरे में आने का मान मोहन बसाओ नाम मैं आने का मान मोहन बसाओ ना।
रंग रूप रहित लखात सब ही है हमें वैसे एक और ध्याय धीर धरी है कह रंग रूप रहित लखात सब ही है हमें वैसे एक और ध्याय धीर धरी है कह जानते हो कृष्ण के विरह में हमें केवल अद्वैत ही अद्वैत सूझ रहा है। हमारे आंखों के सामने अब कोई रूप नहीं दिखाई दे रहा है न रंग दिखाई दे रहा है। एक कृष्ण को छोड़ करके कुछ सूझता नहीं कि कुछ रंग भी है रूप भी है। तो रंग रूप रहित लखात सब ही है हमें जितना है सब अब निराकार ही दिख रहा है। इसका मतलब है कि हम किसी को देख नहीं रहे हैं। तो वैसे एक और ध्याय धीर धरी है कहे तो इसी प्रकार का एक और निराकार का ध्यान करके हमको धीरज कैसे होगा। हजारों निराकार तो हम देख ही नहीं रही मतलब हमारे लिए सब निराकार हो गए तो एक और निराकार का ध्यान धर करके धीर कैसे धरेंगे। कहे रत्नाकर जरी है बिरहानल में हम बिरहानल में बिरह की आग में पूरी पूरी जल चुकी हैं तो और अब ज्योति को जगाई जरी है कह और फिर एक दूसरी ज्योति का ध्यान करने को कह रहे हो तो ऐसे तो बिरह की आग में जल ही रही है तो एक अलग से ज्योति जगा कर क्या जरना है और ताप बढ़ाना क्या है क्या उसमें दम है। हम बहुत प्रचंड आग से जल चुकी हैं और ब्रह्म ज्योति की आंच मत लगाओ। राखो धरी उधो उते अलख है अरूप ब्रह्म अपना अलख और बिना अंग वाला ब्रह्म उधर ही रखो मथुरा की तरफ ले जाओ। राखो धरी उधो उते अलख अरूप ब्रह्म पासों काज कठिन हमारे सरी है न उस ब्रह्म से हमारा कोई काम नहीं होगा। सरी है मन सधेगा नहीं एक ही अनंग साधी साध सब पूरी अब हम तो एक ही अनंग की साधना की मतलब कृष्ण की कामना की एक अनंग कामदेव की आराधना की तो ये हालत कर दिया तो एक दूसरा अनंग की आराधना करके हम क्या करेंगे। दूसरा निराकार अनंग कामदेव को कहते हैं जिसका कोई शरीर नहीं तो एक अनंग के फेर में पड़ करके तो ये हालत हुई और अंग रही तो आराध्य करिए कहा अब हम अब दूसरे की क्या आराधना करें निराकार की। रंग रूप रहित लखात सब ही है हमें वैसे एक और ध्यायी धीर धरी है कहा। कह रत ना कर जरी है बिरहानल में और अब ज्योति को जगाई जरी है कहा। रखो धरी उधौत अलखाय रूप ब्रह्म तासो काज कठिन हमारे सरी है न एक ही आनंद साधी साध साध पूरी अब और अंग रही तराधि करी है कहा। एक ही आनंद साधी साध साध पूरी भई और अंग रही तराधि करी है कहा।